ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। राजयोग द्वारा सुख और शांति की प्राप्ति, इस विषय को लेकर आप यहाँ शिविर में आए हैं, यह समझने के लिए कि कैसे राजयोग के द्वारा सुख शांति की प्राप्ति होती है। राजयोग क्या है, उसके विषय में आज सुबह आपके दो सत्र हुए। प्रातः काल के सत्र में आपको योगी की पहचान दी गई। योगी कौन है, साधक कौन है? तो साधक या योगी आत्मा है, और मैं वो आत्मा हूँ। और योग मुझे किससे लगाना है, परमात्मा से, जो योगेश्वर है। तो योगी उस योगेश्वर से योग लगाता है, ये राजयोग है। तो दो विषय आपके हुए, योगी की पहचान और योगेश्वर की पहचान, मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है। अभी तीसरा विषय राजयोग का है कि वो योगी उस योगेश्वर से मिलन कैसे मनाए, अर्थात राजयोग का आधार क्या है और उसकी विधि क्या है। योग माना मिलन, और राजयोग माना उस सर्वोच्च सत्ता से मिलन। परमात्मा जो सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, उसके साथ आत्मा का मिलन। इसलिए भी इसका नाम राजयोग है, क्योंकि जो सबसे ऊंचा है उससे मिलन है। राजयोग माना सभी योगों का राजा, जिसमें ऊंचे से ऊंचे के साथ मिलन है। क्योंकि योगी तो सभी हैं हम, मन जिसके विषय में सोचता है उसके साथ योग हो जाता है। पर जब मन परमात्मा में लग जाए, जो ऊंचे से ऊंचा है, तब राजयोग कहलाता है। और इस राजयोग की जो विधि है वो भी बहुत ऊंची है, बहुत श्रेष्ठ है। कैसे मिलन मनाएं? कई समझते हैं कि परमात्मा तो एक पहाड़ की चोटी के समान है, और उस तक जाने के लिए कई रास्ते हैं। इसलिए किसी भी रास्ते से चले जाओ, आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो। तो हम कहेंगे कि चलो रास्ते अनेक होंगे, लेकिन आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, कौन सा पसंद करेंगे रास्ता लेना? बहुत लंबा, बहुत कठिन, उबड़ खाबड़ वाला रास्ता, खराब और बहुत तकलीफ हो जिस रास्ते पर, वो तो नहीं चुनेंगे ना। कौन सा चुनेंगे, कौन सा पसंद करेंगे, जो सहज हो, शॉर्टकट हो, क्योंकि समय कहाँ है लोगों के पास। तो सहज भी हो, सरल भी हो, सुगम भी हो, शॉर्टकट हो, जल्दी पहुंच सके, और किसी भी प्रकार की कठिनाई, परिश्रम, कष्ट न हो। वो सबसे रॉयल तरीका होगा, रॉयल रास्ता होगा। आप माउंट आबू जाएंगे तो कई रास्ते हैं माउंट आबू जाने के, कई पहाड़ों पर चढ़ के भी जाते हैं, कई घंटों लग जाते हैं, लेकिन अभी समय कम है तो जो रोड बना हुआ है गाड़ी में बैठे और चले 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो परमात्मा से मिलन की जो विधि है वो राजयोग में बहुत ऊंची विधि है, बहुत रॉयल तरीका है। इसलिए वो विधि आज हम समझेंगे। और फिर जो प्राप्ति है वो भी बहुत श्रेष्ठ है। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भगवान से तो हमको, हमारे पास सब कुछ है, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं है, लेकिन बस एक ही इच्छा रहती है कि भगवान से हमें शांति मिले, बस शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे ऊंची प्राप्ति हम किसको कहेंगे? धन दौलत वैभव मकान जमीन जायदाद नाम मान शान मर्तबा, ये सब होते हुए भी हम एक ही अभिलाषा रखते हैं कि वह शांति मिले। तो शांति की प्राप्ति ये सर्वोच्च प्राप्ति है और राजयोग के द्वारा ये इतनी सहज मिलती है जिसके लिए कोई कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शांति आपसे दूर नहीं है। शांति केवल एक सोच की दूरी पर है बस, और वो सोच सही हो तो शांति तो आपके पास ही है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं मैं बहुत अशांत हूं तो फिर आपको शांति कभी नहीं मिलेगी, चाहे कितना भी आप भगवान से भी क्यों न प्रार्थना करके कहें। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूं तो शांति आपके पास ही है, क्योंकि जब कहा ओम शांति, ओम शांति का मतलब क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति तो मेरा अपना ही स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव ही है तेज प्रकाश। अगर अग्नि कहलाए और तेज और प्रकाश न हो तो वो अग्नि थोड़ी हुई। तो आत्मा माना जिसका मूल स्वभाव शांति है, वो मुझे कहीं और से लाना नहीं है। जल का स्वभाव है ही शीतलता, जल को हम अग्नि देंगे जल गर्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही अग्नि हटाई तो जल वापस शीतल हो जाएगा, क्योंकि वो अपने स्वभाव में आ जाएगा। तो आत्मा का मूल स्वभाव है ही शांति, ये हमें राजयोग से शिक्षा मिलती है। इसीलिए कहते आपको शांति बाहर नहीं मिलेगी, अंदर जाओ, अंदर में ढूंढो, अंदर में पाओ। अब अंदर में कैसे पाएंगे हम? कुछ शरीर में थोड़ी कोई काट करके शांति देखेंगे। शरीर की शांति का अर्थ ही दूसरा है। जब कोई कहते हमें शांति चाहिए तो शांति, अगर शरीर की बात है तो शरीर की शांति माना मृत्यु। जब किसी की मृत्यु होती है तब कहते इनका देह शांत हो गया, कहते ना। लेकिन फिर भी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति मिले। तो शरीर की शांति की बात ही नहीं है, मृत्यु में चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए। अब मन की शांति जब कहते हैं, तन की नहीं कहते हैं, तो मन की शांति का भी मतलब क्या है? मन की शांति का मतलब ये तो नहीं है कि मन शून्य हो जाए, बस कुछ भी न सोचे। कई लोग यही समझते हैं, मन की शांति माना एकदम शून्य बन जाए, असोच बन जाए। मन को दमन कर दे, यही मेडिटेशन है। राजयोग मेडिटेशन ऐसा नहीं है। राजयोग मेडिटेशन क्या है? सबसे पहले खुद को पहचानो, आप कौन हो। तो क्यों नहीं हमारा मन परमात्मा में लगा? क्योंकि हम खुद को नहीं पहचानते थे, हम खुद को देह देख रहे थे, इसलिए मन अशांत था। देह से संबंधित सारी बातें मन में आती थी और मन बेलगाम घोड़ा होके भटकता रहता था। और जैसे ही राजयोग द्वारा हमें यह पहचान मिली कि आप ये देह नहीं हो लेकिन एक आत्मा हो और आत्मा का स्वभाव शांति है, तो मुझे कहीं भी शांति ढूंढने के लिए जाना नहीं है, केवल अंतर में झांकना है। फिर जिस परमात्मा में मन लगाने की बात है उसको भी नहीं जानते थे, इसलिए भी मन भटकता था, किसमें मन लगाएं। अब राजयोग द्वारा हमें ये भी पता चला कि परमात्मा कौन है, योगेश्वर कौन है। अब जब दोनों का परिचय मिला तो मन सहज लग सकता है। जैसे आपका टेलीफोन ठीक है और जिसको आप टेलीफोन करना चाहते हैं उसका भी टेलीफोन ठीक है, तो आप जैसे ही नंबर घुमाएंगे उसको कनेक्शन मिल जाएगा। परंतु आपका टेलीफोन ठीक है, उसका भी ठीक है, पर टावर ही नहीं है ना। मोबाइल में बात करना चाहते, मोबाइल में बात तो करेंगे लेकिन टावर ही नहीं है। आप रास्ते पर है, वहाँ टावर है नहीं, तो कितना भी आप कोशिश करो नहीं लगेगा कॉल, नहीं कनेक्शन होगा। तो इसीलिए आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिल भी जाए लेकिन ये जो मन है जो मिलन का अनुभव कराता है, वो मन इतना शुद्ध चाहिए। अगर मन का शुद्धिकरण नहीं है तो उस मन में परमात्मा कैसे स्थान लेगा। जैसे दूध हमारे पास है लेकिन बर्तन साफ नहीं है जिसमें दूध रखते हैं, तो वो दूध गंदे बर्तन, मैले बर्तन, खटाई वाले बर्तन में रख दिया तो फट जाएगा, खराब हो जाएगा, मैला हो जाएगा, पीने योग्य तो नहीं होगा। इसलिए ये तीन कदम है राजयोग में। पहले खुद को पहचानो, फिर ईश्वर को पहचानो, फिर मन का शुद्धिकरण करो। अब मन का शुद्धिकरण कैसे करे? परिचय तो मिल गया आत्मा परमात्मा का, उसका आधार क्या है, उसकी विधि क्या है, जो सहज मन परमात्मा में लग जाए। उसके लिए हमें पहले राजयोग की एक सुंदर डेफिनेशन समझनी होगी। स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को यथार्थ रूप से याद करना। याद तो ये मन का ही काम है, मन से ही याद करते हैं, पर यथार्थ रूप से याद करना यही राजयोग मेडिटेशन है। तो तीन बातें चाहिए, एक तो स्वयं को आत्मा निश्चय करो, दूसरा परमात्मा को पहचानो और तीसरा यथार्थ रूप से याद करो। अब ये तीन बातें हम समझेंगे। कई कहते हैं बस हम तो यही सोचते हैं मन को शून्य बना दे, कुछ भी नहीं सोचे, ब्लैंक, चित्तवृत्ति निरोध, सप्रेशन, दबाना है मन को, कुछ नहीं सोचना है। वास्तव में ये राजयोग नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना, क्योंकि मन का तो काम ही सोचना है। तो मन का दमन नहीं करना है, मन कभी दमन होगा भी नहीं, लेकिन मन को सुमन करके अमन करना है। सुमन माना सुंदर विचार मन में लाने हैं, जिन सुंदर विचारों के आधार से मन में अमन होगा यानी शांति होगी, वो शांति के विचार मन में लाने होंगे, जिसके लिए आपका दूसरा विषय हुआ आज सकारात्मक सोचने की कला। वो सकारात्मक सोच शांति का अनुभव कराएंगे। क्योंकि नकारात्मक सोच अशांति का अनुभव कराते हैं, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव होगा। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा स्वभाव शांति है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अशांत नहीं कर सकेगी। अगर अशांत होते हो तो आपने खुद ही ठान लिया मैं बहुत अशांत हूं, कोई जबरदस्ती आपको अशांत नहीं कर सकता है। कोई भी आपको दुख नहीं दे सकता आपकी परमिशन के बिना। आपने उनको परमिशन दे दी कि हाँ भले दुख दो, इसलिए दुखी हो गया। तो इसीलिए शांति या तो है या तो नहीं है, एक ही सोच की दूरी पर है। वो आत्मा का मूल स्वभाव है, और अगर देह अभिमान है तो शांति कहाँ से आएगी। तो केवल मन को शून्य बनाना ये लक्ष्य नहीं है। इसलिए जब ओम शांति कहते हैं, तीन बार शांति शब्द कहते हैं, दादी जानकी जी अभी आएंगे, आपसे तीन बार ओम शांति कहलवाएंगे। तो तीन बार ओम शांति कहने का अर्थ है, पहले मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, फिर दूसरी बार माना मैं आत्मा उस शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ, तीसरी बार ओम शांति माना मैं आत्मा शांति के धाम की वासी हूँ, मैं संसार की रहने वाली नहीं हूँ। तो मैं शांत स्वरूप शांति के सागर परमात्मा की संतान और शांति धाम का वासी। तो शांति तो मेरे से दूर थोड़ी होगी। जैसे कोई व्यक्ति, उसके पास बहुत धन है, बैंक में भी बहुत धन है, जमीन भी बहुत है, खानदानी है, सब कुछ बहुत है, तो वो कैसे कहेगा मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो गरीब हूँ। बहुत है उनके पास, कोई कमी नहीं। तो शांति मेरा अपना स्वभाव है, शांति का सागर परमात्मा मेरा पिता है, शांति का धाम मेरा अपना निज घर है। एक सेकंड में चले जाओ उस धाम में अपने पिता के पास, शांति आपके साथ ही है। इसलिए शून्य बनाने का लक्ष्य नहीं है, पर वो विधि आनी चाहिए कैसे मन उस शांति धाम में शांति के सागर के पास पहुंच जाए। तो इसीलिए शून्य बनाना नहीं है। फिर कई कहते क्या दबाव डाले, हम कहते दबाव का मतलब ये नहीं है कि ऐसे जबरदस्ती करना है। एक बच्चा अपने पिता को कैसे याद करता है, पिता को याद करना उसके लिए कठिन थोड़ी है। पिता के पास क्या प्रॉपर्टी है वो भी जानता है, तो इसलिए वो बात याद करना मुश्किल थोड़ी है उनको। तो दबाव भी डालने की बात नहीं है, लेकिन मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, बच्चा हूँ उस पिता का, तो मन तो क्यों नहीं लगेगा उस पिता में। फिर तीसरी बात कही कहते हैं कि मन तो बहुत चंचल है, इसलिए मेडिटेशन मेरे से नहीं होता है। क्यों कहा चंचल? क्योंकि हम उसको दमन करने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्स देने की कोशिश कर रहे हैं, या नेगेटिव थिंकिंग है। अब नेगेटिव थिंकिंग होगी तो कैसे मन शांत होगा? मन नेगेटिव मन की तो बहुत फास्ट स्पीड होती है। तो चंचल ये कह देने से उसको छोड़ भी नहीं देना है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बहुत चंचल होता है, छोटे बच्चे चंचल होते हैं, सारा टाइम इधर से उधर भागता रहता है, लेकिन जितना ही वो छोटा बच्चा चंचल है उतना ही वो रचनात्मक भी है। तो माँ उसकी रचनात्मकता खत्म नहीं करेगी, ऐसे नहीं सारा टाइम उसको मारती रहेगी क्योंकि चंचल है, बांध के भी नहीं बिठाएगी, दबाएगी भी नहीं, मारेगी भी नहीं, पर उसको छोड़ेगी भी नहीं। भाई छोड़ दे चलो जो भी ये करता रहे, छोड़ेगी तो वो तो नाक में दम कर देगा क्योंकि चंचल है। तो छोड़ेगी भी नहीं और बांधेगी भी नहीं, दबाएगी भी नहीं, लेकिन क्या करेगी, उसको कुछ काम दे देगी। काम दे देगी, वो कुछ न कुछ करता रहेगा, बिजी रखेगी। अब बिजी नहीं रखेगी बच्चे को तो चंचलता करेगा, बिजी हो गया चंचलता खत्म, उसी में वो रमण करता रहेगा जो भी उसको कार्य दिया। तो मन चंचल जरूर है, अगर सोचे इसको खाली रखें तो खाली मन तो शैतान का घर बन जाता है और ही जास्ती शैतानी करेगा। उसको काम दो तो क्या काम दे, तो कई समझती है कि काम क्या देंगे, तो आसन करना, प्राणायाम करना, श्वास चढ़ाना, अंदर लेना छोड़ना, ये काम हम मन को दे रहे हैं। पर ये काम मन को नहीं दे रहे हैं, ये काम तो आप अपनी इंद्रियों को दे रहे हैं, मन को कौन काम दे रहे हैं। मन का तो काम सोचना है, मन माना सोचने की शक्ति, वो तो आत्मा की शक्ति है। अब ये सांस लेना छोड़ना या जो कुछ भी अलग अलग विधि करते आसन की, वो शरीर के लिए ठीक है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन इससे कोई मन को शक्ति मिलेगी ये जरूरी नहीं है। मन के लिए तो अलग विधि चाहिए। तो फिर कई समझते हैं हम कैसे मेडिटेशन करें, एकांत स्थान में बैठ करके करना होगा, और हमारे वहाँ तो बहुत आवाज है इसलिए मेडिटेशन नहीं कर सकते। हम कहते हैं बाहर का आवाज हमारे मेडिटेशन में विघ्न नहीं होगा। बच्चे चंचल है तो भी माँ मेडिटेशन में बैठी है, बच्चा माँ की साड़ी खींच रहा है, बाल खींच रहा है, पर वो शांत बैठ सकती है। पूजा में बैठे हैं शांत बैठ सकते हैं, भले बाहर आवाज क्यों ना हो, क्योंकि ये तो अंतर की बात है ना, ये बाहर की तो बात ही नहीं है। फिर कई कहते हैं कि आंखें बंद करके बैठते हैं तो कब तक हम बैठ सकेंगे, क्योंकि चलते फिरते खाते पीते करना है तो आंखें बंद करके तो नहीं कर सकेंगे, खुली रहेगी तभी तो चलते फिरते होगा। तो हम कहते हैं आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं है, आप किसी गहरे चिंतन में होते हो तो आंखें बंद करके थोड़ी चिंतन करते हो, पर आंखें खुली भी है तो भी नहीं देख रहे हो, देखते हुए भी नहीं देख रहे हो, सुनते हुए भी नहीं सुनते हो, क्योंकि आप किसी गहरे चिंतन में हो। तो ये आंख कान ये विघ्न नहीं है, अगर ये कला आ जाए अंतर में जाने की, जैसे कछुआ होता है उसको चलना होता है अंग निकालेगा, नहीं चलना होता है तो अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, अपने अंदर में समेट लेता है। एक पंछी होता है उसको पंख होते हैं, अगर उसको बैठना है तो डाली पर बैठेगा, नहीं बैठना है एक सेकंड में उड़ जाएगा, उसके पास पंख है, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर डाली कमजोर भी है तो भी उसको डर नहीं है, क्योंकि डाली टूट भी जाए तो उड़ जाएगा ना, वो थोड़ी कोई गिरेगा। तो आत्मा भी तो पंछी है ना, आत्म पंछी कहते हैं। तो कैसे मैं आत्मा पंछी ये कला जान जाऊं अपने अंतर में जाने की, खुद को पहचानने की। तो एक अंतर की यात्रा, फिर ऊपर की यात्रा, मन परम धाम में परमात्मा के पास लग जाए, उड़ जाए आत्मा मन बुद्धि से, ये कला राजयोग हमें सिखाता है। इसीलिए आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं है, फिर श्वास पर ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है, वो फिजिकल के लिए बहुत अच्छा है, श्वास कैसे अंदर जा रहा है बाहर निकल रहा है। विपस्सना योग में श्वास पर ध्यान देते हैं तो थोड़ी देर के लिए चलो मन शांत हो जाता है, जैसे किसी बच्चे को एक नई चीज दिखाओ वो देखेगा, फिर थोड़ी देर के बाद फिर रोना शुरू कर देगा, क्योंकि खाली देखने से क्या होता है, उसको तो कुछ एक्टिविटी चाहिए। तो इसीलिए राजयोग तो और इनसे ऊंचा है। फिर कई कहते हैं कि ये अच्छा तो लगता है पर ऊब जाते हैं, क्यों ऊब जाते हैं, क्योंकि एक मंत्र मिल जाता है जाप करने लिए, एक माला मिल जाती है कि ये माला फेरते रहो, सामने कोई मूर्ति रखते हैं तो आंखों को काम मिला, उंगलियों को काम मिला मणके फेरने का, मुख को भी काम मिला जाप करने का, लेकिन मन को तो काम दिया ही नहीं। मन तो सूक्ष्म चीज है, मन तो फिर भी बेलगाम घोड़ा होके भटकेगा, इसलिए अर्जुन की यही शिकायत थी भगवान के आगे, हे भगवान ये मन तो बहुत चंचल है, बहुत पापी है, दुष्ट है, नीच है, घोड़ा है। लेकिन राजयोग कहता है ये मन पापी दुष्ट नीच नहीं है, मन तो आपका मित्र है, मन कोई आतंकवादी या दुश्मन नहीं है, ये मन ही तो लगाना है ईश्वर में। यही तो बीच में वो कड़ी है जो एक सेतु है, एक ब्रिज है जो परमात्मा से मिलन का अनुभव कराएगी। और जब अर्जुन ये शिकायत करता है कि ये मन नहीं लगता, तब भगवान ने बहुत सुंदर उसको युक्ति बताई। वैराग्य और अभ्यास इससे मन मुझ में लगा सकते हो। अब जब वैराग्य शब्द सुनते हैं तो कई लोग सोचते हैं इसका मतलब क्या सन्यासी बन जाएं, दुनिया छोड़ दें, तभी मन लगेगा ईश्वर में। अब वो भी नहीं है, अर्जुन को ये तो नहीं कहा मैदान छोड़ के भाग जाओ, और ही कहा तुम्हें कर्म करना है, तुम योद्धे हो, कायर मत बनो, कर्म करो, युद्ध करो। अर्थात आप अपने कर्तव्य से विमुख मत हो, लेकिन वैराग्य का मतलब है सब कुछ करते हुए फंसो मत। जैसे नाव अगर पानी पर है, चाहे कितनी भी भारी क्यों न हो, स्टीमर कितने बड़े बड़े होते हैं, कितने भारी होते, कितना टन सामान उनमें होता है, लेकिन कभी डूबते नहीं है। तो न डूबे उसकी शर्त ये है कि पानी उस स्टीमर में नहीं आना चाहिए। स्टीमर पानी पर हो पर पानी स्टीमर में न हो, और अगर भूल से भी छेद आ गया और पानी आ गया अंदर, वो स्टीमर डूब जाएगा। तो तब डूबा जब पानी आ गया अंदर। तो संसार में रहना कोई बुरी चीज नहीं है, परंतु संसार हमारे में रहे हर वक्त, ये अवश्य गलत होगा। और इसीलिए उदाहरण दिया कमल फूल का, जैसे कमल का फूल कीचड़ में ही पलता है लेकिन फिर भी न्यारा रहता है। तभी जितना हिस्सा कमल का कीचड़ के ऊपर है उतना हिस्सा ही पूजा के काम आता है। तो भगवान हमें यही शिक्षा देते हैं कि कैसे संसार में भी रहो पर फिर भी मन मेरे में लगाओ, फंसो कहीं नहीं, मेरे साथ योग लगाओ। इसीलिए कई ये बातें न समझने के कारण समझते ये तो बड़ा मुश्किल है और स्थूल रूप में चले जाते हैं और उसी को ही योग समझ लेते हैं। तो वास्तव में राजयोग वो रॉयल पद्धति है, वो रॉयल विधि है। जैसे बच्चा अपने पिता को याद करता है, मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा की संतान हूँ, ये आत्मा को निश्चय अगर है तो मन परमात्मा से हटेगा ही नहीं। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ आधार चाहिए, क्योंकि मन कहाँ कहाँ जाता है ये भी एक मनोविज्ञान है। मन के लिए कितना भी हम कहें कि मन तो बहुत चंचल है, लेकिन फिर भी उसके आगे कुछ हदें हैं। मन वहाँ कभी नहीं जाएगा जिसको हम जानते ही नहीं है, वहाँ कैसे जाएगा पता ही नहीं है। तो पहला आधार मन को कहीं भी जाने का है, वो है किसी बात की पहचान, इन्फॉर्मेशन, सूचना थोड़ी भी अगर मिली तो मन जरूर वहां जाएगा। फिर सूचना मिली, पहचान मिली, परिचय मिला, कुछ पता चला, उसकी जानकारी हुई, फिर उसके बाद दूसरा कदम है जो मन और जाएगा, जब उसके साथ कुछ संबंध होगा। जहां संबंध होगा वहां मन अवश्य जाएगा। आप ट्रेन में बैठे हैं, आपके पास में कोई व्यक्ति बैठा है, अब जब तक आप उसको जानते नहीं है तो बातचीत भी कैसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बातचीत कैसे करेंगे, उनसे पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या करते हो, आदि आदि प्रश्न करेंगे पहचान के लिए। और पहचान लेते लेते अगर ये पता चल जाता है कि आप भी एक इंजीनियर हो और वो भी एक इंजीनियर है, अब इंजीनियर इंजीनियर से मिला तो बड़ी खुशी होगी। आपको ये पता चला कि जिस गांव में आप रहते थे वो भी उसी गांव का है तो और खुशी होगी, कुछ समानता मिली, जैसे संबंध जुड़ गया। तो जहाँ संबंध है, जहाँ उस संबंध में कुछ समानता है, वहां तो मन सहज लगेगा। तीसरा, संबंध के बाद फिर स्नेह हो गया, उसका कोई गुण अच्छा लगा, उसकी कोई विशेषता है, कोई उसमें ऐसे क्वालिटीज है, तो थोड़ा स्नेह भी उसके साथ हो जाएगा। और फिर लेन देन भी चालू हो गई, कुछ प्राप्ति उससे हुई, आपने कुछ दिया उसने कुछ दिया, तो मन तो पूरा ही लग जाएगा उसमें। तो मन को कहीं भी जाने के ये चार आधार है, परिचय, पहचान, संबंध, प्रेम और प्राप्ति। अब ये चारों ही आधार हम परमात्मा से लगाएंगे। सबसे पहले आत्मा और परमात्मा की पहचान, और दूसरा फिर आत्मा परमात्मा से संबंध। आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है? वास्तव में सब संबंध है ईश्वर के साथ, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। अभी ये जो हमने कहा, माना सब संबंध मेरे ईश्वर के साथ है, प्रार्थना करते हैं ना, और एक जन्म में ये नहीं कहा है, हर जन्म में ये प्रार्थना की है। जो देह के माता पिता शिक्षक या मित्र संबंधी बंधु सखा, वो तो एक जन्म के होते हैं, कोई कर्मों अनुसार वो संबंध जुड़ता है, और जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा होता है संबंध भी पूरा हो जाता है, अगले जन्म में वही संबंध होगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन परमात्मा के साथ आत्मा का कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं है, लेकिन परमात्मा ने वो कर्तव्य किए हैं, मात पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु साजन शिक्षक विद्या द्रविणम त्वमेव, ये कर्तव्य किए हैं भगवान ने सब संबंधों के, इसीलिए हम उनकी प्रार्थना में ये महिमा गाते हैं। परंतु कहीं वो संबंध आज टूट चुका है, क्योंकि अगर संबंध होता सही तो प्राप्ति होती, स्नेह होता, जहाँ संबंध है वहाँ स्नेह जाएगा, वहाँ शक्ति की अनुभूति होगी, प्राप्ति होगी। अभी तो हम भिखारी बन करके भगवान से शक्ति मांगते हैं, इतनी शक्ति तो देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, भिखारी बन के मांगते हैं। तू प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे हम। अरे भगवान तो सागर है, तो सागर से बूंद थोड़ी मांगी जाती है, पूरा सागर पी जाओ, मना कहाँ कर रहा है सागर। अब सागर किनारे जाकर के कहेंगे क्या, हे सागर एक बूंद ही हमें दो, वो कहेगा खुला हूँ जितना चाहिए लो। सूरज से ये थोड़ी कहेंगे सूरज मुझे एक ही किरण दो बस, खुला है सूरज, क्या रोशनी मिल रही है जितनी चाहिए लो। तो परमात्मा तो दाता है, पर आज तक हम क्यों नहीं वो अनुभव कर सके उनकी शक्ति का, क्योंकि संबंध कहीं कट गया था, टूट गया था। धूप आ रही है लेकिन मैंने खिड़की बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, तो कहां से धूप आएगी। तो इसीलिए क्या करना होगा, हमें ये संबंध जोड़ने की विधि जाननी होगी जो टूट गया है। जैसे यहाँ बिजली आ रही है, अचानक बिजली चली जाए तो क्या कहेंगे, फ्यूज उड़ गया, अचानक और जगह बिजली है यहाँ क्यों नहीं है, तो इस हॉल का जो फ्यूज है मीटर है उसमें वो उड़ गया, तो फिर उसको जोड़ना है, इसलिए बिजली नहीं थी। तो आत्मा परमात्मा का संबंध कहीं कट गया है, इसीलिए वो शक्ति की अनुभूति नहीं होती, इसलिए भिखारी बनकर के हम मांग रहे हैं भगवान से। तो कैसे फिर से जोड़े, अब कटी कैसे, हमने सोचा परमात्मा तो बहुत पावन है और मैं तो पतित हूँ, अब कैसे जोड़ होगा। जैसे बिजली की तार जोड़नी है, बिजली चाहिए तो तांबे को तांबे से जोड़ना पड़ेगा। अगर रबर साथ में है तो वो रबर तांबे पर जोड़ दिया फ्यूज पर, तो करंट थोड़ी आएगा, रबर को हटाना पड़ता है और तांबे की तार को तांबे से जोड़ना पड़ता है। हम रेडियो चाहते हैं कोई स्टेशन, और रेडियो स्टेशन जो चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मीटर बैंड क्या है, कुछ पता ही नहीं है। तो आप कैसे ट्यूनिंग करेंगे, सारा दिन सुई घुमाते रहो वो रेडियो स्टेशन आएगा नहीं, क्योंकि ट्यूनिंग नहीं हो पा रही है। वो कौन सा उनका फ्रीक्वेंसी है वो सब मालूम हो ना तो सेट हो जाता है, वहां पर सुई रखेंगे वो आवाज़ हमें मिलेगी। इसी प्रकार संबंध कैसे टूट गया, हमने क्या सोचा परमात्मा तो बहुत पावन है और मैं तो पतित हूँ। अब संबंध है क्या, पावन पतित का कोई संबंध नहीं है। परमात्मा तो निराकार है, नाम रूप जाति जो भी है ये सबसे न्यारा है, और मैं तो फलाना नाम रूप धर्म जाति भाषा प्रांत देश व्यवसाय न जाने कितने लेबल्स लगा लिए हमने अपने ऊपर, तो ईश्वर से कैसे संबंध जोड़ेगा, परमात्मा तो लेबल्स वाला है ही नहीं। फिर हमने सोचा परमात्मा तो कहीं सातवें आसमान का रहने वाला और मैं तो इस संसार का प्राणी हूँ। अब संसार का प्राणी हूँ और वो कहाँ मैं कहाँ, मिलन कैसे होगा, कैसे ट्यूनिंग करेंगे। इसीलिए योग लगा ही नहीं। अब राजयोग हमें विधि बताता है कि परमात्मा और आत्मा में समानता क्या है, अंतर भी बहुत है, इसीलिए दो शब्द आत्मा और परमात्मा। मैं एक आत्मा हूँ और वो परम आत्मा है, ऊंचे से ऊंचा। किसमें परम, ज्ञान गुण शक्तियों कर्तव्यों में अथॉरिटी में सबसे ऊंचा है, वो भी एक आत्मा है। लेकिन समानता भी बहुत है। अब उस समानता को जैसे पहचानेंगे, ट्यूनिंग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, संबंध जुड़ जाएगा। और फिर तीसरा आधार है प्रेम, ईश्वर से प्रेम हो। आज प्रेम नहीं है परमात्मा से, आज स्वार्थ है, आज अभिमान है, दिखावा ज्यादा है, क्योंकि सच्चे प्रेम में दिखावे की जरूरत ही नहीं है। वो तो लगन में ऐसे मग्न हो जाते हैं जैसे कि उनके लिए और कुछ है ही नहीं, दिखावा थोड़ी करना होता है और स्वार्थ थोड़ी होता है सच्चे प्रेम में। सच्चे प्रेम में तो कुर्बानी होती है, न्योछावर होना होता है, समर्पण महिता होती है, त्याग होता है। जहाँ स्नेह है वहाँ अधिकार भी होता है लेकिन त्याग भी बहुत होता है। तो आज जो आत्मा का परमात्मा से संबंध अगर कुछ समझते भी हैं तो स्वार्थ इतना भरा हुआ है कि भगवान से कुछ मिला तो भगवान बहुत अच्छा, और नहीं मिला तो भगवान जैसे बुरा कोई नहीं। हे भगवान तुम कितने निर्दयी हो, तुम बहरे हो, तुम ये हो, सुनते नहीं हो। हाँ, भगवान को तो गालियां भी देते हैं लोग, क्या नहीं कहते बुरा भला, क्योंकि स्वार्थ भरा हुआ है, वो सच्चा प्रेम तो है नहीं। इसलिए वो सच्चा प्रेम कैसे जागे, उसकी विधि क्या है, ये राजयोग बताता है। और चौथा प्राप्ति, इतनी ऊंची प्राप्ति है परमात्मा से, जिसके लिए कहा जाता है देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के देता, देंदा दे लेंदा थक जाए। लेने वाले थक सकते हैं, देना देने वाला दाता नहीं थकेगा। तो क्या है प्राप्ति, उनसे हम करें, अभी इसके लिए भी विधि चाहिए। तो पहली बात, परिचय आपको मिला, आत्मा का भी मिला, आप कौन है अगर कोई आपसे पूछे तो आप एक आत्मा है, एक ज्योति है, प्रकाश का पुंज है, चमकता हुआ एक सितारा है, आप ज्ञान स्वरूप पवित्र स्वरूप शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप आत्मा है। इस शरीर में आप यहाँ भृकुटि के मध्य विराजमान हैं, यह आत्मा की टेम्पररी एड्रेस है, और परमानेंट एड्रेस तो पांच तत्वों से परे, दुनिया में तो हम मेहमान हैं। या तो एक्टर बन के आए हैं पार्ट बजाने के लिए, ये मंच तो हमारा घर नहीं है ना संसार। कहा कहते जहाँ से आए हैं वहाँ वापस जाना है, भगवान के घर से आए हैं भगवान के घर जाना है, शरीर के लिए कहेंगे मिट्टी से आया है मिट्टी में मिल जाना है, तो जो चीज जहाँ से आई है वहीं उसको जाना है वापस। तो आत्मा उस परमात्मा के घर से परमधाम से आई है वहीं जाना है, इसलिए मोक्ष मुक्ति की हम कामना करते हैं क्योंकि वहीं जाना है। अब राजयोग में हम सीखते हैं कि मन से आप एक सेकंड में चले जा सकते हो, आपका ही घर है, लेकिन घर की एड्रेस मालूम ही नहीं थी तो इसलिए घर पहुंचना भी असंभव सा लग रहा था और कह दिया मन तो बड़ा चंचल है। इसलिए आत्मा का परिचय मिलने के बाद फिर परमात्मा का भी परिचय मिला। परमात्मा हम किसको कहते हैं, जब शिव कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, तो वो रूप में ज्योति बिंदु है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जितना ही वो बिंदु रूप है उतना ही वो गुणों में सिंधु है, सागर है, दाता है, और हम उनके बच्चे हैं। और परमात्मा भी परम धाम का वासी है, हम दोनों का घर एक ही है, बाप बेटे का घर तो एड्रेस तो एक ही होगी ना, अलग अलग थोड़ी होगी। चलो बड़ा हुआ अलग मकान ले लिया, पर बचपन में तो माँ बाप के साथ ही रहेगा ना बच्चा, तो वही एड्रेस है, तो एक ही घर है, एक जैसा स्वरूप है, एक जैसे गुण भी है, जो परमात्मा के गुण है आत्मा के वही गुण है। तो जब ये हमें समझ में आता है तो मन को परमात्मा में लगाना बहुत सहज है, क्योंकि तीन प्रकार की समानता है आत्मा और परमात्मा में। पहली समानता है कि आत्मा भी ज्योति स्वरूप, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप, ये देह अभिमान एक रबर है, ये विघ्न है जो परमात्मा से मिलन मनाने नहीं देता। तो उसकी विधि बताई कैसे देह अभिमान से परे हो जाओ। जैसे ये शरीर पर वस्त्र है वैसे शरीर भी एक वस्त्र है जो मुझे आत्मा ने धारण किया है। मैंने कितने वस्त्र बदले होंगे, जैसे सुबह से रात तक कई बहुत वस्त्र बदलते हैं, अलग अलग प्रसंग के लिए अलग वस्त्र धारण करते हैं, तो आत्मा ने भी कितने देहरूपी वस्त्र बदले होंगे, कितने अभिनय किए होंगे, लेकिन मेरा स्वरूप तो वही है, मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, परमात्मा भी एक ज्योति है, तो समानता है स्वरूप में। दूसरी समानता है कि एक ही घर है, इसलिए उनको पुकारने की, बुलाने की, हाँ चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, मन से पहुंच जाओ अपने घर में। कितनी देर लगेगी मन से, आप यहाँ बैठे हो, अपने गुजरात से आए हो या मध्य प्रदेश से आए हो, कहाँ से भी आए हो, जहाँ आपका घर है, जहाँ से आप आए हो, यहाँ बैठे मन से उस घर में जाने में आपको कितनी देर लगेगी, एक सेकंड लगेगा। तो परम धाम में जाने में भी एक सेकंड लगना चाहिए। तो इसीलिए परमात्मा को हम हाँ जब याद करें तो एक सेकंड लगना चाहिए मन को वहीं ले जाने में, क्योंकि वो मेरा भी घर है। परमात्मा से निमंत्रण थोड़ी चाहिए कि वो बुलाए तब मैं जाऊं। कई लोग निमंत्रण मांगते हैं भगवान से, हे भगवान मुझे उठा लो इस दुनिया से, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे उठा लो, मुझे नहीं जीना है संसार में। भगवान कहते ऐसा निमंत्रण मत मांगो भगवान से, ये जीवन तो बड़ा सुखदाई है, हीरे तुल्य मानव जन्म है, लेकिन हाँ आप मेडिटेशन करके एक ऊपर की यात्रा पर जा सकते हो सहज, यहाँ होते हुए भी यहाँ से आप न्यारे बन सकते हो, इसीलिए कोई कठिनाई है ही नहीं। और कैसे जाएंगे, मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा परम धाम की निवासी हूँ, अखंड ज्योति के मह तत्व का मैं निवासी हूँ। और तीसरी समानता, जो परमात्मा के गुण है वो आत्मा के भी गुण है, वही गुण है, इसीलिए आत्मा को परमात्मा का अंश माना जाता है। अंश तो अंश का मतलब ये नहीं कि उसका कोई टुकड़ा है हम, लेकिन अंश का मतलब है गुणवत्ता वही है, संख्या भी अंश जरूर है, क्वालिटी इज सेम, क्वांटिटी में अंतर है। परमात्मा शांति का सागर है, तो मैं कोई अशांत स्वरूप थोड़ी हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, वही क्वालिटी है। वो प्रेम का सागर है, तो मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, वही क्वालिटी है। इसीलिए परमात्मा कहते अंश माना टुकड़ा नहीं, पर गुणवत्ता वही संख्या में अंतर है। अंश रूप में, संख्या में, क्वांटिटी में जरूर है। वो शांति का सागर है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, लेकिन मैं आत्मा अपनी शांति को भूल जाती हूँ, यही तो अंतर है। फिर कई समझते आत्मा ही परमात्मा बन गई, ये बीच में जो दीवार है, दे अभिमान, ये हट गया तो आत्मा परमात्मा बन जाती है। हम कहते परमात्मा नहीं बनती है, आत्मा परमात्मा नहीं बनेगी, लेकिन है ही परमात्मा की संतान। तो बच्चा क्यों नहीं, अधिकारी होता है। परमात्मा कोई डिग्री नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, कोई पद नहीं है जो आत्मा जाकर के पाएगी। क्या उसके पहले परमात्मा नहीं है क्या? क्या वो केवल 5 साल के लिए होता है, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर इलेक्शंस लड़ो, फिर जीतो? ऐसे थोड़ी है। पिता तो, माता पिता तो हमेशा ही माता पिता होते हैं। और क्यों परमात्मा को हम माता पिता कहते हैं? क्योंकि परमात्मा आत्मा को एक नया जन्म देते हैं, फिर से वो स्मृति दिलाते हैं कि हे आत्मा तुम कौन हो। तो वो स्मृति दिलाना जैसे एक नया जन्म परमात्मा हमें देते हैं। अब जब 3 बातों की समानता समझी, उसके आधार से हम मिलन का अनुभव करेंगे। तो राजयोग क्या है? एक यात्रा है। जैसे कोई यात्रा पर जाता है तो मंजिल उसको पता है, मुझे कहाँ जाना है। अमरनाथ जाना है तो वही मार्ग लेगा, ये नहीं कि अमरनाथ जाना है तो दक्षिण का मार्ग लेगा, उत्तर का ही मार्ग लेगा। अपना रास्ता तय करेगा किस मार्ग से जाना है, कैसे जाना है। तो राजयोग भी एक यात्रा है। अब उसमें मंजिल क्या है, कहाँ पहुँचना है? कई समझते भगवान तक पहुँचना यही यात्रा की मंजिल है। वास्तव में परमात्मा को यहाँ ही अपना साथी बनाओ, परमात्मा तक पहुँचना ये लक्ष्य नहीं है। क्योंकि तब तक क्या वियोग है क्या? जब तक पहुँचे ही पहुँचे, तब तक वियोग थोड़ी नहीं है। योग है तो योग बना मिलन, तो मिलन तो हम पहले कदम से ही कर सकते हैं, क्योंकि वो तो मेरा साथी है, मेरे सब संबंध है उनके साथ। मन से तो मिलन है ही, इसीलिए परम धाम जो आत्मा का लक्ष्य है, पहुंचना है, उसमें लक्ष्य क्या है कि जिस स्थिति में आत्मा इस संसार में आई थी, इतनी शुद्ध स्थिति थी आत्मा की, उसी शुद्ध स्थिति में आत्मा को वापस जाना है, वैसे ही जाना है, उसी स्वरूप में जाना है, उन्हीं गुणों में जाना है। तो इसीलिए ये नहीं कि हे भगवान कहके मैं जा करके सोचूं तब जाके मिलूंगी। परमात्मा से मुझे जा करके नहीं मिलना है, उनको आना है हमसे मिलने के लिए। इसीलिए हम भगवान को बुलाते हैं, हे प्रभु इस संसार में अति अधर्म हो गया है, तो धर्म ग्लानी का समय है, अब परमात्मा का भी वायदा है, मैं आता हूँ। तो परमात्मा को साथी बना करके इस यात्रा पर चलो। और कैसे बनाएंगे साथी? परमात्मा को मन ही मन में आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन करके साथी बनाओ। तो राजयोग का पहला कदम क्या है? आत्मा और परमात्मा का चिंतन। हम आपको कोई मंत्र नहीं देंगे कि आप बैठ के इसका जाप करें। जैसे मान लीजिए कई मंत्र देते हैं, पर मंत्र देना एक बात है, फिर मंत्र के साथ साथ कहेंगे कि इतनी बार आपको जाप करना है, 1,00,000 बार जाप करना है सारे दिन में। अब वो 1,00,000 की गिनती तो बहुत लंबी होती है, तो एक एक समय पर 1,000 बार जाप करेंगे, फिर 100 बार बैठना पड़े जाप करने लिए, क्योंकि 1,00,000 की गिनती है। तो सारा समय गिनते ही रहते कितनी बार हुआ कितनी बार हुआ कितनी बार हुआ, अभी और कितना करना है और कितना करना है। अब ओम नमो शिवाय का जाप मिला मानो और गिन रहे हैं कितनी बार हुआ, तो जाप कर तो रहे हैं लेकिन शिव से योग नहीं है। योग माना मिलन, वो शिव से मिलन नहीं हो रहा है, गिनती से मिलन हो रहा है। हाँ होता है ना माताएं, होता है कि नहीं, कितनी बार हुआ कितनी बार हुआ कितनी बार हुआ, शिव से मिलन कहाँ किया। अगर शिव से मिलन है तो बोलने की भी जरूरत नहीं, जैसे किससे मिलन होता है उसका नाम भी नहीं उच्चारण करना पड़ता, उसमें खोए रहते हैं, नाम भी याद करने की जरूरत नहीं होती, उसके तो बन गए उसमें रम गए। इसीलिए ओम नमो शिवाय का भी अर्थ क्या है, मैं शिव को नमस्कार कर रहा हूँ। अगर मैं दे अभिमान में हूँ तो शिव को नमस्कार कैसे करेंगे हम, दे अभिमान से तो होगा नहीं, उसके लिए तो बड़ी नम्रता चाहिए। फिर जिस शिव को नमस्कार कर रहे उसका भी कुछ परिचय नहीं है, वो कहाँ है कैसे मिलेगा कहाँ जाना होगा उसके लिए क्या करना होगा कुछ पता नहीं है, अंदर में असमंजस है बीच वो कंफ्यूजन है, तो मिलन का अनुभव कैसे होगा। इसीलिए पहला कदम मन को परमात्मा में लगाने के लिए मन का शुद्धिकरण करना होगा, और वो शुद्धिकरण कैसे होगा, आत्म परमात्मा चिंतन से। और वो आपको बताया, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं प्रकाश का पुंज हूँ, मैं चमकता हुआ एक सितारा हूँ, मैं परमधाम का वासी हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, वो भी ज्योति बिंदु है, सब गुणों का सागर है, वो शांति का सागर है तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, वो प्रेम का सागर है मैं प्रेम स्वरूप हूँ। ये आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन ये राजयोग का पहला कदम है। मंत्र का वास्तव में अर्थ भी यही है, मंत्र का अर्थ कोई जाप के रूप में नहीं है। मंत्र का मतलब क्या होता है, मंत्र शब्द कहाँ से आया, जैसे योग शब्द युज से आया जोड़ना, वैसे मंत्र शब्द संस्कृत में मंत्रणा एक शब्द है, मंत्रणा, मंत्रणा माना राय सलाह, विचार विमर्श, आपस में चर्चा करते वो मंत्रणा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं क्या करें कैसे करें। तो मंत्रणा से मंत्र शब्द आया, और जिसने मंत्र दिया वो मंत्री कहलाया। इसलिए पहले जमाने में राजाओं के जो मंत्री होते थे वो एडवाइजर, राय देने वाले सलाहकार, उनको मंत्री कहते थे। तो यहाँ पर मंत्र का मतलब है बुद्धि मन को सलाह दे, क्या सोचना है, अभी क्या होता है, क्यों मन चंचल है, क्योंकि इंद्रियों के वश है मन, जहाँ इंद्रियां खींच के ले जाती वहीं मन चला जाता है, तो मन चंचल रहता है क्योंकि इंद्रियां तो चंचल है, इंद्रियों का तो काम ही है एक्शन में आना। मन इतना ही शांत हो, इंद्रियां एक्शन में हो, शरीर को तो जितना चलाएंगे उतनी शक्ति का अनुभव होगा, बिठा देंगे तो शक्तिहीन हो जाएगा शरीर, और मन को जितना शांत रखेंगे उतनी शक्ति आएगी मन में, अंतर है दोनों में। अब होता क्या है, इंद्रियों के वश है तो मन चंचल हो गया, और इंद्रियों को तो काम देते ही नहीं है, बैठे रहते एक जगह पर, अंदर की चंचलता है इंद्रियों की, जीभ रस, कन रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, और मन उसी में फंसा हुआ है और बुद्धि को दबा देता है। अब डायबिटीज है, किसी को शक्कर नहीं खानी है, डॉक्टर कहता है शुगर नहीं लेनी है, आपकी डायबिटीज बहुत हाई है। अब उसको देखा, उसने आंखें ललचाई मान हुई, गुलाब जामुन देखा, रसगुल्ला देखा, हाँ मिठाई देखी, बहुत पसंद है तो मुख में पानी आ गया, पहले आंखें लालच से भरी, फिर जीभ लालच से भरी, फिर हाथ को हुआ जल्लू नो, फिर आंखें देखती रही, कोई देखता तो नहीं है, हाँ उठा लो और खा लो, फिर बुद्धि कहती मत खाओ मत खाओ, तुमको शुगर है नहीं खाना है, कहते कोई बात नहीं थोड़ा इंसुलिन ज्यादा लगा लो ना। बुद्धि मन को इंद्रियों की चंचलता के कारण बुद्धि को दबा दिया। बुद्धि कह रही है गलत है, ये नहीं खाओ, तो बुद्धि को ही समझाता है मैं ज्यादा अकलमंद हूँ। मन कहता है थोड़ी ज्यादा दवाई ले लूंगा ना, इसमें क्या है, पर खाना नहीं छोड़ूंगा। तो होना क्या चाहिए, बुद्धि मन को दिशा दे और मन इंद्रियों को दिशा दे। अभी क्या होता है, इंद्रियां मन को दिशा देती है और मन बुद्धि को दबा रहा है, उल्टी गाड़ी चलती है। तो परिणाम स्वरूप मन तो चंचल ही रहेगा। अब बुद्धि, इसलिए इसको बुद्धि योग कहा, बुद्धि मन को दिशा दे। अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया इस संसार में, क्या है जीवन का लक्ष्य, कहाँ जाना है, कौन है ईश्वर, क्या है अच्छा, क्या है बुरा, क्या है पाप, क्या है पुण्य, ये सोचना है। और अपने अंतर से ही आपको आवाज आएगी, ज्ञान अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है, ज्ञान अंदर से आता है। जो बाहर से आता है वो तो सूचना है, और जो अंदर से आता है वो ज्ञान है। इसलिए कहते अंदर जाओ। बाहर से देखेंगे शांति चाहिए, तो वो बाहर की शांति तो गलत चीज है, वो तो कई बार डरावनी भी शांति होती है, क्योंकि आवाज नहीं है। पर बाहर भले आवाज हो, पर अंतर में शांति है, क्योंकि विचार जो मेरे वो शांति के चल रहे हैं। तो इसीलिए पहला कदम है आत्मा और परमात्मा का चिंतन। अब दूसरा कदम है परमात्मा से रू रिहान, आत्मा परमात्मा से बातें करे, बातें करे, भगवान से बातें करो। कई कहते हैं हम भगवान से बातें तो बहुत करते, लेकिन भगवान का जवाब नहीं आता है, जवाब नहीं आता है। हम कहते हैं भगवान से बातें करते हो जवाब नहीं आता है, तो उसमें कुछ कारण होगा ना, क्यों नहीं जवाब आता है। अब आप किसी से टेलीफोन पर बात कर रहे हो और उसका जवाब ही नहीं आ रहा है, तो क्या पता कट गई लाइन, तो जवाब ही नहीं आ रहा है, क्या पता, कुछ तो कारण होगा जो जो जवाब नहीं आ रहा है। या तो लाइन कट गई, या तो वो जवाब देना ही नहीं चाहता है। कई बार ऐसे भी होता है जवाब देना ही नहीं चाहता है, कई बार तो लाइन ही नहीं जुड़ी। हम ऐसे सोचते हैं कि लाइन क्यों, मैं बात कर रहा हूँ, हेलो 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 फलाना फलाना, और जवाब है ही नहीं। तो क्यों नहीं जुड़ा ईश्वर से संबंध, क्यों नहीं परमात्मा का जवाब आया। कारण तीन है, और ये तीनों का निवारण अगर करेंगे तो सहज परमात्मा का भी जवाब आएगा। पहली बात, हम भगवान से कुछ मांगे नहीं, मांगे इस संसार की कोई वस्तु मत मांगो भगवान से, बहुत दिया ईश्वर ने, जितना दिया है उसका सदुपयोग करो, तब भगवान प्रसन्न होंगे। क्योंकि अगर और मांगते रहेंगे तो जैसे गवर्नमेंट का आप टैक्स नहीं भरते, ये नहीं भरते, तो गवर्नमेंट आपको रेड करेगी, है ना। तो भगवान ने भी इतना दिया है और भी मांग ही रहे हो, तो भगवान पूछ सकता है ना कि इतना जो दिया वो क्या किया, हिसाब बताओ, हिसाब भी तो बताना पड़ेगा ना, इतना जो दिया है। इसलिए और तो मत मांगो भगवान से। उसकी बजाय अगर सच्ची प्रीत है ईश्वर से, तो भगवान को हम धन्यवाद जरूर करेंगे, क्योंकि उसने ही ये दिया है। एक एक जो चीज हमें मिल रही है कितनी कीमती है, तो ईश्वर की दी हुई है यही मानते हैं, तो धन्यवाद तो करो। और जितना धन्यवाद करेंगे उतनी प्रीत ईश्वर से बढ़ती जाएगी। फिर कई कहते हैं अच्छा धन्यवाद तो कर सकते, लेकिन शांति तो मांगे। हम कहते शांति भी कोई मांगने की चीज नहीं है, ये तो आत्मा का अपना स्वभाव है। तो ये कहने की बजाय हे प्रभु मुझे शांति दो, भाषा बदल जाएगी, वाक्य बदल जाएगा, शिव बाबा मेरे वो पिता हैं, आप शांति के सागर हो और मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ। ये पहचान मिली आत्मा को, तीसरा नेत्र खुल गया कि मैं शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान, शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम का वासी हूँ। एकदम शांति की अनुभूति एक सेकंड में हो जाएगी, बिना मांगे, मांगने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपके पास ही है। तो इसलिए गुण भी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर कई कहते हैं कि हमने इतनी भूले की अपने जीवन में, कम से कम भगवान से माफी मांगे। हम कहते माफी तो भले मांगो, अच्छी बात है, परंतु माफी मांग के फिर भूल तो दोबारा नहीं करो। कई बार हम माफी मांगते फिर सोचते भगवान ने माफ कर दिया, फिर दोबारा भूल करेंगे, फिर माफी मांगेंगे, हम भूल करें और वो माफी दे। मनुष्य अपने आप को छुड़ाने के लिए कई बार ये कहते हैं कि भूले करना ये मनुष्य का धर्म है और क्षमा करना ये भगवान का धर्म है। हम भूले करते जाएं, वो क्षमा करता जाए। लेकिन परमात्मा तो बड़ा धर्मराज भी है, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए ये मत सोचिए भगवान बहुत ही भोला है, जो हमारी भूले वो माफ करता जाएगा और हम करते जाएंगे भूले। लेकिन अगर भूल हुई, ईश्वर को सच बता दो, छिपाओ नहीं। इंसान से कोई छिपाए, लेकिन भगवान से तो छिपा नहीं सकते हो, न खुद से छिपा सकते हो, क्योंकि अंदर तो मन खाएगा ना। तो इसीलिए सच बता दो ईश्वर को, भले किसी और को न बताना हो। और सच बता करके माफी केवल नहीं मांगो, प्रतिज्ञा करो, संकल्प करो, डिटरमिंग थॉट कि शिव बाबा मैं आगे ये भूल नहीं करूंगा। और जैसे आपने संकल्प किया, ये हिम्मत दिखाई, तो परमात्मा की आपको इतनी मदद मिलेगी, इतनी मदद मिलेगी जो आप महसूस करेंगे कि अरे ये कैसे सहज हो गया सब कुछ, क्योंकि परमात्मा की मदद मिली आपको। पर हिम्मत ही नहीं रखेंगे, पर भगवान मदद करो, हिम्मत भी तुम दो। कई बार भगवान कम कहते भगवान हिम्मत भी नहीं है मेरे अंदर, वो भी तुम दो, मदद तो करो हिम्मत भी तुम दो, तो बाकी तुम्हारे पास क्या है, इतने हीन है क्या हम। किसी ने बहुत सुंदर कहा, मैं सब कुछ हूँ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ ये भी नहीं, पर मैं कुछ तो हूँ जो सब कुछ कर सकता हूँ। समझ गए, मैं सब कुछ हूँ ये भी नहीं, अभिमान भी नहीं आना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ, पर हीनता भी नहीं आनी चाहिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो हीनता भी अज्ञान है और अभिमान भी अज्ञान है, पर मैं कुछ हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ ये स्वमान है। हा? ऐसे है ना, हाँ, अपने लिए ताली बजाओ। तो इसीलिए हम माफी मांगे और समझ गए जाएं कि हम छूट गए, वो भी नहीं। कर्मों की गति बड़ी गहन है, कल शाम को आपका विषय है ये कर्म की गुह्य गति। तो इसीलिए वो भी नहीं है, पर हाँ सच बताकर ऐसी प्रतिज्ञा करो, संकल्प करो कि फिर वो न हो। अब ये जब हो, ये है रूढ़िहान परमात्मा से बातें करना। और जैसे जैसे ये बातें करते जाएंगे, मन इतना एकाग्र होता जाएगा, परमात्मा से वो प्रीत जुटती जाएगी और धीरे धीरे आप उसमें एकाग्र हो जाएंगे। और वो एकाग्र जैसे होते गए वो अनुभूति आपको स्वाभाविक आने लगेगी। तो खाली मन नहीं है, लेकिन भर रहा है, भरपूर हो रहा है, भरपूर हो रहा है। मन जैसे भरपूर हो जाए, जैसे कोई चीज सैचुरेटेड होने लगती है, भरपूर हो गई तो और कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि भर गया। मेरे सामने 100 व्यंजन रखे हो लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है, तो हम कहेंगे नहीं भाई प्लीज और कुछ नहीं चाहिए। और खाली है पेट और कहीं नहीं चाहिए तो मन तो जाएगा। पर ये भरपूर मन हो, एक एक गुण से ऐसा भरपूर हो जाए, बुद्धि के द्वारा मन उस गुण से भरपूर हो जाए, स्वच्छ हो जाए, पावन हो जाए, तो परमात्मा के गुण में आप समा जाएंगे। इसको कहते एकाग्रता की शक्ति, परमात्मा में के गुण में स्थित होना। और उसके आधार से जो अनुभव हो, अभी इसको हम थोड़ा और समझेंगे, आत्मा और परमात्मा का चिंतन कैसे करें। आत्मा स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा निश्चय कर ज्योति स्वरूप परमात्मा के नाम रूप एवं गुणों का चिंतन करना, वो चिंतन करो, यही मंत्र है। मंत्र का दूसरा भी अर्थ होता है जिससे मंत्र हो जाए, त्र माना तृप्ति, प्राण, संतुष्टता, भरपूरता, वो ऐसा सुंदर चिंतन मन में हम करें, एक रचनात्मक चिंतन, वो चिंतन मुझे भरपूर कर दे। तो आत्मा और परमात्मा का चिंतन जिससे मन का शुद्धिकरण होगा, और फिर आप महसूस करेंगे जैसे ये शरीर का अभिमान टूटता गया, आत्मा को जैसे पंख लग गए या फरिश्ते बनते गए, ये भी अनुभव होगा। इतने हल्के हो जाएंगे क्योंकि बोझ खत्म हो गया, जो देह अभिमान के कारण बोझ महसूस होता था, व्यर्थ संकल्प, अशुद्ध संकल्प, ये सब खत्म हो जाएंगे, मन स्वच्छ हो जाएगा। और उस स्वच्छता की स्थिति में हम महसूस करते हैं कि परम सत्ता से हम सब संबंध अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा हमारे माता पिता को माँ का प्यार मिलेगा, भगवान से हम वो प्यार ले सकेंगे, पिता का प्यार मिलेगा, बंधु सखा का प्यार मिलेगा, वो शिक्षक से हमें शिक्षाएं मिल रही है, वो अनुभव होगा, वो आवाज आएगी, एक तो अपनी आत्मा की आवाज, फिर परमात्मा की भी आवाज हम महसूस कर सकेंगे। परमात्मा सतगुरु हमें शुद्ध बना रहा है, घर वापस ले जा रहा है, ये भी बुद्धि में आएगा, और फिर वो खुदा दोस्त बन जाता है। खुदा दोस्त कैसे, हर वक्त हम उनसे ही बातें करते हैं, भले कोई और हो ना हो, हम भगवान से बातें करते हैं, और उसके साथ साथ वो साजन भी है, वो बच्चा भी है, क्योंकि कोई देहधारी रूप ये सब संबंध नहीं निभा सकता है, लेकिन परमात्मा देहधारी नहीं है, वो ज्योति स्वरूप है, आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। और जब आत्मा को कुछ महसूसता होने लगती है तो सब संबंध अनुभव होने लगते हैं, और इसका फिर बहुत विस्तार है जो आप सेवा केंद्रों पर जाकर के समझना। और उसके बाद हम महसूस करते हैं कि जैसे हम परमात्मा से बातें करते हैं, इतना हल्का हो जाते हैं, जैसे किसी को अपनी बात सुनानी है तो हल्के हो गए, तो भगवान को सुनाओ, बहुत हल्के हो जाएंगे आप, और परमात्मा आप वो आपकी आपकी जो भी बात है वो सुरक्षित रखेगा, किसी और को नहीं बताएगा, इसलिए विश्वास रखो उन पर। और साथ साथ भाई मुक्त बन जाओगे, क्योंकि परमात्मा हमारा साथी बन जाता है, जिसका साथी भगवान है उसको आंधी तूफान क्या करेंगे, जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, गाते हैं ना हम लोग, तो ईश्वर मेरा साथी है ये समझ लिया तो सब भय से हम मुक्त हो जाएंगे, और साथ साथ सुरक्षा की अनुभूति होगी, शक्ति भी प्राप्त होगी, वो सर्वशक्तिमान मैं आत्मा उनकी संतान शक्ति स्वरूप। और जिस प्रकार ये संकल्प मन में आएंगे, धीरे धीरे मन एकाग्र हो जाएगा उस परमात्मा में, उस बिंदु में, वो बिंदु में सिंधु की शक्ति हमको महसूस होने लगेगी, और उसमें हम खो जाएंगे, जैसे बूंद सागर में समा गई, और वो सागर की शक्ति हमें महसूस होगी, जैसे सूरज की किरणें एक कॉन्वेक्स लेंस से फोकस करते हैं, केंद्र पर के कागज रखते हैं, सूरज की किरणों को केंद्रित करके केंद्र पर एक कागज रख दिया, तो वो सूरज इतना भव्य विशाल, उसका जो प्रतिबिंब बनता है इतना सूक्ष्म बनता है कागज पर, लेकिन कितना शक्तिशाली होता है, क्योंकि कागज को जला देता है, आग निकलती है, क्योंकि केंद्रित की न किरणें। तो परमात्मा की भी याद एक ऐसी केंद्रित हो जाए उस एक एक गुण की गहराई में, शिव बाबा आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ, अब समा जाओ शांति के सागर में, इसी को ही शास्त्रों में लिख दिया, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। विलीनता का मतलब ये नहीं है कि बूंद सागर में मिल गई, अस्तित्व खत्म हो गया, नहीं, लेकिन प्रेम में विलीन हो जाए, गुणों में विलीन हो जाए, शांति में विलीन हो जाए, और उस विलीन होकर के वो भरपूर हो जाए उस गुण में। और जैसे हम भरपूर होंगे वही अनुभूति हम करेंगे, जिसको कहा वो ऊर्जा वो प्रवाहित होगी हमारे अंदर और वो शक्ति का रूप धारण करेगी, वही शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, आनंद की शक्ति, खुशी की शक्ति, ये सब शक्तियां हैं आत्मा की। और ये शक्ति फिर हम कर्म में, वचन में, संकल्पों में व्यक्त कर सकते हैं सबके सामने। और जैसे ही अनुभव करेंगे महसूस होता है कि बैटरी आत्मा की चार्ज हो गई। जैसे आप रोज मोबाइल अपना चार्ज करते हो, अगर चार्ज नहीं किया तो आपको लगेगा अरे कल कैसे काम चलेगा, मोबाइल की बैटरी तो खत्म हो गई है। आधी रात को भी उठ के याद आया तो चार्ज करो, फिर कल सुबह काम आना है। तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है आत्मा की आज। इसीलिए सुख शांति प्रेम शक्ति ये सब गुणों से हम दूर हो गए। अब कैसे चार्ज करो, उस सागर के साथ मिलन का अनुभव करो। और जैसे हम ये चिंतन करके उसमें खोते जाएंगे महसूस होगा कि आत्मा में परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान बुद्धि में सोचा, वही चिंतन मन में है तो मन की स्वच्छता होगी और आत्मा परमात्मा को याद करके खुद का निरीक्षण करेगी कि मेरे पिता इतने ऊंचे, मैं भी इतनी ही ऊंची हूँ। तो निरीक्षण करके विश्लेषण करके संयम करेगी, और जहाँ संयम आया वहाँ आत्मा को बोध होगा कि मैं तो कितनी ऊंची हूँ, कितनी श्रेष्ठ हूँ, कितनी महान हूँ। और उसी बोध से फिर परिवर्तन आएगा, और जहाँ आत्मा परिवर्तन आया फिर धीरे धीरे सब कुछ परिवर्तित दिखेगा। क्योंकि स्मृति दृष्टि वृत्ति कृति स्थिति वातावरण और फिर सारा विश्व, इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक नारा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन से पहले परिवार में परिवर्तन आएगा। आप देखते हैं एक व्यक्ति परिवार में बहुत गुस्से वाला है, शराबी है, बहुत परेशान करता है परिवार वालों को, सारा घर दुखी हो जाता है एक के कारण। जैसे सेब की टोकरी हो और उसमें एक सेब गंदा होता है, सारे सेबों को खराब कर सकता है एक के कारण। तो अगर एक बुरा होता है पूरे परिवार को दुखी कर सकता है। अब इसका ऑपोजिट कर लो, एक अगर अपने दृष्टि वृत्ति को परिवर्तित करके श्रेष्ठ बने सारे परिवार को बदल सकता है, जरूर बदल सकते हैं। इसीलिए ये नहीं कहे क्या करूं क्या करूं, मैं बदलूंगा मैं बदलूंगी तो सब जरूर बदलेंगे। और परिवार में परिवर्तन तो मोहल्ला समाज देश विश्व ये अपने आप होगा। आप पहले खुद को बदलो। एक हमारे पास पत्रकार आए थे, जब उसको कहा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन तो उसने कहा बहन जी ऐसे कैसे होगा, दुनिया करोड़ों लोग हैं, हमारे बदलने से दुनिया बदल जाएगी। हमने कहा बदल के तो देखो। और सचमुच जब वो घर गया अपने अंदर संकल्प किया तो अखबारों में समाचार पत्रों में अनुभव लिखा, कितनों का उसको समाचार आया, रेस्पॉन्ड आया। तो जैसे हमने बताया कि अभी कैसे मेडिटेशन करेंगे, चलिए हम थोड़ा अभ्यास करेंगे। और अभ्यास करने के लिए अपने को कैसे तैयार करेंगे, सबसे पहली बात कि खुद को पहचानो, न मैं ये शरीर हूँ न मैं ये अभिनय हूँ, हाँ कोई माँ है, कोई पिता है, कोई बच्चा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ये तो सब शरीर के लेवल्स है, पर मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, मैं आत्मा परम धाम का वासी हूँ। और कुछ भी नेगेटिव अपने लिए उसको भूलना है, उसको हटाना है, उससे न्यारा बन जाना है, पॉजिटिव सोच मन में लाना है, और उसी पॉजिटिव सोच के आधार से हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए अब हम थोड़ी देर बैठेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 मिनट हम बैठेंगे, फिर आपको छुट्टी देंगे, और फिर रात्रि को आपको 8:45 बजे फिर आना है, बहुत अच्छा वीडियो फिल्म आपको दिखाएंगे। तभी सब सीधा बैठें, सीधा बैठेंगे, जिनको बहुत ज़रूरी उठना है वो मैं देख रही हूँ उठ रहे हैं, थोड़ी सी देर बैठेंगे। ये लाल प्रकाश हमें संकेत दे रहा है कि स्टॉप, आवाजों से दूर जाएं, इस संसार की बातों से दूर जाएं। परम धाम मुझ आत्मा को पहुंचना है, कि अंतर की यात्रा अनुभव करें, अंतर में जाएं। मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, बुद्धि द्वारा मन को यह चिंतन दे, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, भ्रकुटि के मध्य विराजमान चैतन्य सत्ता हूँ, ये शरीर तो नाशवान है परिवर्तनशील है, मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर सृष्टि मंच पर पाठ बजा रही हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, मेरा मूल वतन 5 तत्वों से पार, अखंड ज्योति का एक महतत्व तत्व है। सुनहरा लाल प्रकाश का एक महतत्व ब्रह्म महतत्व जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है। मन की आंख इस धाम में परमात्मा को देखिए, जो रूप में ज्योतिर्बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है। सागर है, दाता है, सदा शिव कल्याणकारी है, सत्यम शिवम सुंदरम है। शांति का सागर है, प्यारे शिव पिता आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। चले जाइए शांति के सागर की गहराई में। महसूस करें आत्मा का निजी स्वभाव शांति। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है, मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव को पहचान रही हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा रही हूँ। मेरे चारों ओर शांति ही शांति। कितनी पवित्रता है, कितना आनंद है। प्यारे शिव पिता आप सर्वशक्तिमान हो, मैं आत्मा आपकी संतान शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रकृति जीत हूँ। अति निज संकल्प शिव पिता के सानिध्य में मैं धन्य हो गई। जो पाना था वो सब कुछ पा लिया मैंने। धन्यवाद शिव बाबा, धन्यवाद। अब इसी शक्ति को स्वयं में समा दी जाए। ये कैसी न्यारी और प्यारी अवस्था है। कितना हल्कापन, मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हो गई। प्यारी शुद्धता मेरे सर्व संबंध आपके साथ है। आप ही मेरे सर्वस्व। हो जाइए परमात्मा के एक एक गुण में। और उस शक्ति को अनुभव करें, शांति की शक्ति, ईश्वर से सच्चा प्रेम। इंद्रियों से परे अति इंद्रिय सुख, परमानंद। मैं आत्मा अपने सर्व गुणों को पहचान चुकी। इतनी शक्ति भरकर फिर वापस लौटो। साकारी दुनिया में कर्म क्षेत्र पर एक नई सोच, नई दृष्टि, नई स्मृति के साथ जो कुछ मैंने पाया है वो मैं अपने मन वचन कर्म से औरों को बांटूं, औरों को दूं, तो यह समाज श्रेष्ठ बन जाए। और मेरा ये जन्म सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। और जन्म जन्म भी सफल हो जाए। यही इस राजयुग का लक्ष्य है। और शुद्ध बन के वापिस घर जाऊं, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाऊं, Oh, shit.